नमस्कार, यूएन न्यूज के साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ मैं सचिन गौड़। 26 फरवरी 2021 के इस अंक में सुनिए, वैश्विक तापमान में कमी लाने के लक्ष्यों से दूर खड़े हैं देश। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, मजबूत जलवायु उपायों के बगैर दुनिया के बिखर जाने का डर। कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई ऐतिहासिक चरण में, न्यायसंगत वैक्सीन वितरण की यूएन पहल के तहत भारत से वैक्सीन के खुराकें रवाना होना शुरू। स्कूलों में बच्चों के लिए सेहतमंद आहार संबंधी कार्यक्रमों पर कोविड 19 और उसके प्रभावों से मंडरा रहा है जोखिम। कोरोना वायरस संकट के दौरान मानवाधिकारों को पहुंचा भारी नुकसान, मगर पुनर्बहाली है सर्वजन के लिए गरिमा सुनिश्चित करने का अवसर। और डिजिटलीकरण के दौर में विषमताओं की रोकथाम पर भी देना होगा ध्यान। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र की एक नई जलवायु रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक तापमान वृद्धि का मुकाबला करने के प्रयासों में जितनी कार्रवाई की जरूरत है, दुनिया भर के देश उसके निकट कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। इससे पहले इसी सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने जलवायु और सुरक्षा के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय परिचर्चा को संबोधित किया। उन्होंने आगाह किया कि जलवायु परिवर्तन ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है, जिसका सामना करने के लिए और अधिक एकजुट कार्रवाई की दरकार है। इस विषय में विस्तृत जानकारी के साथ यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में देशों से पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ज्यादा मजबूत व महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाने का आग्रह किया गया है। ध्यान रहे कि पेरिस जलवायु समझौते में इस सदी के अंत तक पृथ्वी पर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया गया है। फ्रेमवर्क कन्वेंशन की इस रिपोर्ट में देशों की राष्ट्रीय कार्रवाई योजनाओं पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया है, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए गए योगदान यानी एनडीसीज कहा जाता है। ये आकलन इस साल नवंबर में ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में होने वाले जलवायु सम्मेलन COP26 के मद्देनजर तैयार किया गया है। रिपोर्ट में पाया गया है कि कुछ देशों के बढ़े हुए प्रयासों के बावजूद सामूहिक प्रयास अब भी जरूरत से बहुत कम हैं। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने रिपोर्ट के निष्कर्षों के बारे में कहा है कि फ्रेमवर्क कन्वेंशन की ये अंतरिम रिपोर्ट हमारे ग्रह के लिए एक रेड अलर्ट है। इससे पहले मंगलवार को जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें यूएन प्रमुख ने कहा,
द साइंस इज क्लियर, we need to limit the global temperature increase to 1.5 degrees Celsius by the end of the century. And our duty is even clearer. We need to protect the people and communities that are being hit already.
एंटोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि विज्ञान का संदेश स्पष्ट है, हमें इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना होगा, और हमारा कर्तव्य भी अधिक स्पष्ट है कि हमें उन लोगों व समुदायों को सुरक्षा उपलब्ध करानी है जो जलवायु आपदा से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए जलवायु आपदा के बढ़ते दुष्परिणामों का सामना करने के लिए अपनी तैयारियां तेज करनी होंगी। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जो खतरा उत्पन्न कर दिया है, उसका सामना करने के लिए और अधिक एकजुट कार्रवाई की दरकार है। इस परिचर्चा में प्रख्यात प्रकृति इतिहासकार सर डेविड एटनबरा ने भी देशों को आगाह करते हुए कहा कि पृथ्वी पूर्ण बिखराव के निकट पहुंच जाने के जोखिम का सामना कर रही है।
People today all over the world now realize this is no longer an issue which will affect future generations. It is people alive today.
सर डेविड एटनबरा कह रहे थे कि दुनिया भर में आज लोग ये समझने लगे हैं कि ये अब ऐसा मुद्दा नहीं बचा है जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रभावित होंगी। इससे प्रभावित होने वालों में आज के जीवित लोग भी हैं, विशेष रूप में युवा पीढ़ी जो हमारी गतिविधियों के नतीजे भुगतेगी। विश्व प्रसिद्ध प्रकृति इतिहासकार सर डेविड एटनबरा की चेतावनी। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी इसी रफ्तार के साथ आगे चलते रहे तो हम वो सब गंवाने के निकट पहुंच जाएंगे जिससे हमें सुरक्षा प्राप्त होती है, यानी खाद्य उत्पादन, ताजा पानी की उपलब्धता, इंसानों के रहने योग्य तापमान और समुद्री खाद्य सामग्री का सिलसिला।
संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली कोवैक्स पहल के तहत भारत से कोरोना वायरस वैक्सीनों की खेप घाना सहित अन्य जरूरतमंद देशों के लिए रवाना किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की भारत में प्रतिनिधि डॉक्टर यास्मीन अली हक ने कोवैक्स वैक्सीन वितरण की शुरुआत को ऐतिहासिक करार देते हुए इसे कोविड-19 पर काबू पाने की दिशा में लिया गया एक बड़ा कदम बताया है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 5 लाख से ज्यादा खुराकों की खेप शुक्रवार को आइवरी कोस्ट पहुंची है, जो इन टीकों को पाने वाला दूसरा अफ्रीकी देश है। इससे पहले इसी सप्ताह की शुरुआत में 6 लाख खुराकें घाना भेजी जा चुकी हैं। इस अवसर पर यूनिसेफ की प्रतिनिधि एन क्लेयर डुफे ने कहा,
Today we are at the Kotoka International Airport in Accra in Ghana, and this is really a historic moment. Today we are very happy to receive the first batch of COVID-19
आज हम घाना के आक्रा में कोटोका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैं। ये वास्तव में एक ऐतिहासिक लम्हा है। हम कोवैक्स फैसिलिटी के तहत कोविड-19 वैक्सीन की खेप पाकर बेहद प्रसन्न है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड वैक्सीन का उत्पादन भारत में महाराष्ट्र के पुणे स्थित सीरम संस्थान में किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व वाली कोवैक्स पहल का लक्ष्य सभी जरूरतमंद देशों के लिए कोविड-19 वैक्सीन का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। भारत में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की प्रतिनिधि डॉक्टर यास्मीन अली हक ने 24 फरवरी को महाराष्ट्र के पुणे शहर में सीरम संस्थान का दौरा किया और वहां से वैक्सीनों की खेप रवाना किए जाने की तैयारियों का जायजा लिया। वैक्सीन वितरण के प्रयासों में तेजी लाते हुए टीकों की आपूर्ति जल्द ही उन सदस्य देशों को भी की जाएगी जिन्होंने उसके वितरण के लिए अनिवार्य शर्तें पूरी कर ली है। भारत में यूनिसेफ कार्यालय की मदद से ये वैक्सीन खुराकें 82 निम्न और मध्य आय वाले उन देशों में भेजे जाने की योजना है जो कि कोवैक्स पहल का हिस्सा हैं। कोवैक्स पहल के तहत वर्ष 2021 के अंत तक कोरोना वायरस की 2 अरब खुराकों का इंतजाम किए जाने की योजना है। यूएन के शीर्ष अधिकारियों ने अनेक मरतबा दोहराया है कि कोविड-19 महामारी का अंत तब तक संभव नहीं है जब तक उसे हर स्थान पर काबू में नहीं कर लिया जाता। इसके मद्देनजर जरूरतमंद विकासशील देशों में त्वरित गति से वैक्सीन वितरण की अहमियत को रेखांकित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत में पहले से मौजूद वैक्सीन उत्पादन का मजबूत ढांचा एक अहम भूमिका निभा सकता है, जिसके माध्यम से वैक्सीन वितरण में धनी और निर्धन देशों के बीच पनपे अंतर को पाटने का इरादा है। दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 11 करोड़ 24 लाख मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 24 लाख 97 हजार लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने आगाह किया है कि स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले सेहतमंद आहार संबंधी कार्यक्रमों पर कोरोना वायरस और उसके प्रभावों की वजह से जोखिम मंडरा रहा है। यूएन एजेंसी ने बुधवार को एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बच्चों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों में निवेश किए जाने की पुकार लगाई है। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
विश्व खाद्य कार्यक्रम की रिपोर्ट स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्डवाइड दर्शाती है कि महामारी के कारण स्कूल बंद होने से 199 देशों व क्षेत्रों में 37 करोड़ बच्चे स्कूलों में मिलने वाले भोजन से अचानक वंचित हो गए। इनमें से बहुत से बच्चों के लिए ये भोजन दिन का एकमात्र पोषक आहार था। यूएन खाद्य एजेंसी के कार्यकारी निदेशक डेविड बीजली ने बताया कि स्कूलों में भोजन मिलना बच्चों के लिए बहुत अहम बात थी। उन्होंने कहा कि तालाबंदी समाप्त होने के बाद ये भोजन स्कूलों में उनकी वापसी सुनिश्चित करने का माध्यम भी है। इस क्रम में यूएन एजेंसी एक गठबंधन तैयार कर रही है जिसका उद्देश्य स्कूलों में मिलने वाले आहार कार्यक्रमों के स्तर को बढ़ाने में सरकारों की मदद करना है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने एक 10 वर्षीय रणनीति भी पेश की है जिसके जरिए स्कूलों में स्वास्थ्य व पोषण को बढ़ावा देने के लिए एजेंसी की भूमिका को मजबूत किया जाएगा। साथ ही स्कूलों में स्वास्थ्य व पोषण को वैश्विक कल्याण के रूप में पेश करते हुए इस क्षेत्र में शोध को बढ़ावा दिया जाएगा और देशों को कम लागत वाले कार्यक्रम तैयार करने में मदद दी जाएगी। कोरोना वायरस संकट से पहले राष्ट्रीय स्कूली आहार कार्यक्रमों के तहत दुनिया भर में हर 2 में से 1 बच्चे को यानी 38 करोड़ से ज्यादा बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। किसी अन्य समय की तुलना में यह लाभान्वित बच्चों की सबसे बड़ी संख्या थी और इसे दुनिया की सबसे विस्तृत सामाजिक संरक्षा योजना के रूप में देखा जाता है। अध्ययन दर्शाते हैं कि स्कूलों में मिलने वाले भोजन का बच्चों के जीवन पर बड़ा असर होता है, विशेषतः निर्धन परिवारों से आने वाले बच्चों पर। लड़कियों के लिए ये आहार विशेष रूप से अहम है क्योंकि इससे उन्हें स्कूलों में लंबी अवधि तक रखने, बाल विवाह टालने और कम उम्र में गर्भधारण करने से बचाने में मदद मिलती है।
यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने सचेत किया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में मानवाधिकारों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन महामारी से पुनर्बहाली की प्रक्रिया यथास्थितिवाद को पीछे छोड़ने और सर्वजन के लिए गरिमा सुनिश्चित करने का एक अवसर है। यूएन प्रमुख ने वर्ष 2020 में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई की पुकार लगाई थी और इसके ठीक एक वर्ष बाद यूएन महासभा में उन्होंने देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। यूएन महासचिव द्वारा जारी कार्रवाई की वो पुकार 7 सूत्री कार्यक्रम का ऐसा ब्लूप्रिंट था जिसके जरिए समानता को बढ़ावा देने और हर जगह पीड़ा खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था। कोरोना वायरस संकट को पिछली अनेक पीढ़ियों में अब तक की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा गया है, जिसने विषमताओं और भेदभावों को उजागर कर दिया है। इसी दौरान मानवाधिकार और संरक्षा प्रणालियों की परीक्षा हुई है, वे कमजोर हुई हैं और कुछ मामलों में तो ध्वस्त हो गई हैं। बताया गया है कि महामारी के दौरान आपातकालीन उपायों का इस्तेमाल बुनियादी स्वतंत्रताओं का अपराधीकरण करने और असहमतियों को दबाने के तौर पर किया गया है। यूएन महासचिव ने कहा,
En reconstruisant ensemble, nous avons une occasion unique et historique de bâtir un monde où la dignité de chaque personne est reconnue.
हमारे पास साथ मिलकर आगे के रास्ते का निर्माण करने का एक अनूठा और ऐतिहासिक अवसर है, एक नई दुनिया को आकार देने का जहां हर व्यक्ति के पास गरिमा हो, जहां हर समाज संकटों का सामना कर सके और जहां हर किसी का भविष्य अपरिहार्य अधिकारों की नींव पर आधारित हो। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। यूएन की 75वीं वर्षगांठ पर हुए एक वैश्विक सर्वेक्षण के नतीजे दर्शाते हैं कि मानवाधिकार दुनिया भर में लोगों की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने कोविड-19 के खिलाफ सामाजिक आर्थिक जवाबी कार्रवाई योजनाओं के केंद्र में मानवाधिकारों को रखा है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए अनेक नीति पत्र जारी किए गए हैं जिनमें मानवाधिकारों से जुड़े परिप्रेक्ष्य समाहित किए गए हैं। इनमें खाद्य सुरक्षा को बरकरार रखना, प्रवासियों व शरणार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करना और ऐसे कानूनों को हटाए जाने का आह्वान है जिनसे महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव पनपता हो। साथ ही वैश्विक चुनौतियों से निपटने में युवाओं की आवाजों को शामिल किए जाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने कहा है कि विकासशील देशों को कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में अहम औजार साबित होने वाली अभूतपूर्व टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो डिजिटलीकरण के दौर में देशों को पहले से कहीं ज्यादा विषमताओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने गुरुवार को एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें डिजिटल समाधानों के बढ़ते इस्तेमाल और उनके प्रभावों की पड़ताल की गई है। एक रिपोर्ट के साथ प्रतिष्ठा जैन।
यूएन एजेंसी अंकटाड में टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स विभाग की प्रमुख शमिका सिरिमाने ने बताया कि इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का सृजन बेहद कम देश करते हैं और इनमें अधिकांश अमेरिका व चीन में विकसित हुई हैं, लेकिन इसका असर सभी देशों पर होगा। अंकटा द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट में प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने की अपील को रेखांकित किया गया है जो कि डिजिटल और जोड़ने वाली तकनीकों पर आधारित है। इसे फ्रंटियर टेक्नोलॉजी नाम दिया गया है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, 5G, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, नैनो टेक्नोलॉजी और सौर ऊर्जा शामिल है। जीन एडिटिंग क्षेत्र में भी तेज प्रगति हो रही है और पिछले वर्ष कोरोना वायरस वैक्सीन को त्वरित गति से विकसित करने में इसकी भूमिका और महत्व को दर्शाया है। यूएन एजेंसी अधिकारी ने बताया कि विकासशील देशों में डिजिटल औजारों का इस्तेमाल भूमिगत जल प्रदूषण की निगरानी करने, दूर दराज के समुदायों में ड्रोन के जरिए मेडिकल सामग्री की आपूर्ति करने और बिग डेटा के माध्यम से बीमारियों पर नजर रखने में किया जा सकता है, लेकिन इनमें से अधिकांश उदाहरण अभी शुरुआती चरण में है और अभी सबसे जरूरतमंद और निर्धन लोग इनके दायरे से बाहर हैं। बताया गया है कि सफलता के लिए टेक्नोलॉजी की तैनाती में 5 अहम बातों का ख्याल रखा जाना होगा: उपलब्धता, कम लागत, जागरूकता, सुलभता और असरदार इस्तेमाल की क्षमता।
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा है कि अमेरिका द्वारा ग्वांतानामो बे बंदीगृह को बंद किए जाने की घोषणा के बाद ये जरूरी है कि वहां कैदियों के खिलाफ हो रहे मानवाधिकार हनन के मामलों पर भी ध्यान दिया जाए। फिलहाल इस बंदीगृह में 40 कैदियों को रखा गया है। एक रिपोर्ट के साथ महबूब खान।
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR के मंगलवार को जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि ग्वांतानामो बे जेल में रखे गए बंदियों के साथ कथित अत्याचारों और अन्य तरह के दुर्व्यवहारों की जांच होनी चाहिए। ग्वांतानामो बे जेल दरअसल न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन पर 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमलों के मद्देनजर विदेशी आतंकवादी संदिग्धों को हिरासत में रखने के लिए बनाई गई थी। राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई अमेरिकी सरकार ने 12 फरवरी को कहा था कि ग्वांतानामो बे बंदी गृह को बंद करने के लिए औपचारिक समीक्षा शुरू की जा रही है। बराक ओबामा सरकार के दौरान इसे बंद करने के हुए विफल प्रयास को पुनर्जीवित करके इस पर दोबारा कार्यवाही शुरू की गई है। गौरतलब है कि वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओबामा सरकार में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने 11 सितंबर 2001 को हुए हमलों की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर ग्वांतानामो बे जेल और सैन्य आयोगों के संचालन व उनकी विरासत की पारदर्शी, व्यापक और जवाबदेही केंद्रित समीक्षा का आग्रह किया है। वक्तव्य के मुताबिक विशेषज्ञों का कहना है कि वहां रखे गए शेष बंदियों में से अनेक अब कमजोर और बूढ़े हो चुके हैं। अनेक मामलों में उनकी शारीरिक और मानसिक अखंडता को, स्वतंत्रता के अभाव और संबंधित शारीरिक व मानसिक यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक सजा ने तार तार कर दिया है। स्वतंत्र विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि जिन नीतियों व प्रथाओं के तहत इस तरह के बंदी गृह और सैन्य आयोग बने, उन्हें खारिज करना बेहद जरूरी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि यह भी जरूरी है कि जिन लोगों को जबरन गायब किया गया, मनमाने ढंग से हिरासत में रखा गया, प्रताड़ित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दिए गए उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया, जिनमें निष्पक्ष मुकदमे का अधिकार भी शामिल है, उन्हें अब इसका पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने अमेरिकी सरकार से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है कि असाधारण रेंडिशन, यातना, गुप्त नजरबंदी और भेदभावपूर्ण तरीकों से चलाए गए मुकदमों की कार्यवाही सहित मानवाधिकार हनन के सभी विश्वसनीय आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो व दोषियों को सजा मिले।
और जाते जाते एक नजर कुछ घोषणाओं पर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने भारत की लिजिया नरोना की नियुक्ति सहायक महासचिव और यूएन पर्यावरण एजेंसी के न्यूयॉर्क कार्यालय की प्रमुख के तौर पर किए जाने की घोषणा की है। लिजिया नरोना यूएन एजेंसी के न्यूयॉर्क कार्यालय में मौजूदा प्रमुख सत्य त्रिपाठी का स्थान लेंगी। लिजिया नरोना वर्ष 2014 से नैरोबी स्थित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी की अर्थव्यवस्था शाखा में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उधर यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने सुपर मॉडल और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी नतालिया वोदियानोवा को अपनी नई सद्भावना दूत नियुक्त किया है। यूएन जनसंख्या कोष ने कहा है कि नतालिया की मदद से महिलाओं व लड़कियों को सशक्त बनाने और महावारी से जुड़ी वर्जनाओं का मुकाबला करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही ब्रिटिश अभिनेत्री गुगू मबाथारो को यूएन शरणार्थी एजेंसी की सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। गुगू मबाथारो ने महामारी के दौरान शरणार्थियों को समर्थन की जरूरत रेखांकित की है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।